उसके बाद है जी आगे रुकू नंबर 17, बहुत ही खूबसूरत आयते हैं जिसमें अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा को शिर्क और तौहीद के फ़र्क के बाद उनका मकसद हयात याद दिलवा रहे हैं। आयत 73 से 78, रुकू 17, सारे मामला अल्लाह ताला ही की तरफ लौटाए जाते हैं। या यूहन्ना सुदूरी बमा सलूम फस्तमेउ लहू, अब यहाँ अल्लाह ताला कह रहे हैं ज़रा ज़्यादा ही गौर से सुनिए, फस्तमेउ नहीं है फस्तमेउ, बाब इस्तेफ़ाल में ज़्यादा तवज्जो है, ज़रा रिलैक्स करके कान खोल कर सुनेंगे हम सब। लोगों एक मिसाल बयान की जा रही है, ज़रा कान लगा कर सुन लो। अल्लाह के सिवा जिन जिन को तुम पुकारते रहे हो वो एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते, क्या ये सिर्फ कब्रों वालों की बात, लकड़ी और पत्थर के बुतों की बात है? नहीं, दुनिया का हर इंसान इसमें आता है। किसी इंसान को इस मुकाम पे ना खड़ा कर दीजिए कि वो खुदाई में शरीक होता हुआ दिखे। कब मक्खी पैदा नहीं कर सकते गो के सारे जमा हो जाएं, बल्कि अगर मक्खी को चीज़ ले भागे तो ये भी इससे वो छीन नहीं सकते। बड़ा बुज़दिल है तलब करने वाला, और बड़ा बुज़दिल है वो जिससे तलब किया जा रहा है। उन्होंने अल्लाह के मर्तबे के मुताबिक इसकी कदर जानी ही नहीं। वमा कदरुल्लाह हक्का कदरी, इससे पहले कहाँ पढ़ा आपने अल्लाह नाम में, यहाँ आगे फिर आएगा। लोगों ने अल्लाह की वो कदर ना पहचानी जो उसकी कदर का हक था। अल्लाह तो बड़ा ही जोरावर कुव्वत वाला गालिब और ज़बरदस्त है। फरिश्तों में से और इंसानों में से रसूलों को अल्लाह छांट लेता है, बेशक अल्लाह ताला सुनने वाला देखने वाला है। वो बखूबी जानता है जो कुछ इनके आगे है और जो कुछ इनके पीछे है, और अल्लाह ही की तरफ सब काम लौटाए जाते हैं। अब आगे आपका नाम है, मेरा भी नाम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू वस्जुदू, ए ईमान वालों, और हम क्या कहेंगे, ए ईमान वालियों, क्योंकि अब यहाँ तो सारी वालियाँ ही हैं, ये मेरे आपके लिए है। आपको मुझे उम्मते मुस्लिमा का एजेंडा, मनहज, मेथडोलॉजी, अल्लाह का कुर्ब कैसे पाना है, आज के दौर में मुसलमानों को करना क्या है। ऐ ईमान वालों, रुकू सजदा करते रहो और अपने परवरदिगार की इबादत में लगे रहो और नेक काम करते रहो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। नोट कीजिएगा, आयत ख़त्म हो गई 77। ये है आपकी मेरी इनफरादी इबादत। इंडिविजुअली हम सब का मुहासबा होगा, लेकिन क़यामत के दिन आपका मेरा मुहासबा सिर्फ इनफरादी नहीं, इज्तमाई भी होगा। दूसरी तरफ कह लें, बस इंसान होने के नाते भी और उम्मत मुस्लिमा का फ़र्द होने के नाते भी हमारा हिसाब होगा। आयत 77 तक अगर आपकी नमाज, रोज़ा और आपकी नेकियां काफ़ी हैं, इंशाल्लाह 100/100 भी आ जा सकता है, 100/100, और आप अल्लाह की रहमत से वन साइडेड पास हैं। ऐसे कि आपके दो इम्तिहान थे, एक थ्योरेटिकल था और एक प्रैक्टिकल था। थ्योरी में आप पास हो गए, आपने रेसिपी सारी दिखा दी, आपने कहा मुझे ये भी आता है वो भी आता है, कर दिया। लेकिन अब अगला इम्तिहान आपका वाइवा है, आपका प्रैक्टिकल है। आपको वहाँ जाकर खिचड़ी चावल पका कर खिलाने हैं उनको कि आपको कुकिंग आती है कि नहीं आती। वो है वजह हिदुबिल्लाही हक्का जिहादी। यहाँ से आपकी मेरी इज्तमाई नेकियाँ, बीइंग अ उम्मते मुस्लिमा का फ़र्द शुरू होती हैं, और वो क्या हैं, और अल्लाह की राह में वैसा ही जिहाद करो जैसे जिहाद का हक है। उतनी जिद्दोजहद करो जितना हक है, उतनी मेहनत करो जितना इसका हक है। इसी ने तुम्हें चुन लिया, बरगुजीदा किया, तुम पर दीन के मामले में कोई तंगी नहीं डाली। दीन अपने बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम का कायम रखो, उसने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा। कितनी दफ़ा इस आयत को हमने नोट किया पीछे, वसम्माकुमुल मुस्लिमीन, उसने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है, इस कुरान से पहले भी और इसमें भी, ताकि पैगंबर तुम पर गवाह हो जाए और तुम तमाम लोगों के गवाह बन जाओ। बस तुम्हें चाहिए कि नमाज कायम रखो और ज़कात अदा करते रहो और अल्लाह को मजबूत थाम लो, वही तुम्हारा मौला और मालिक है। बस क्या ही अच्छा मालिक है और कितना बेहतर मददगार है। कामयाबी का नुस्खा, साहबे कराम इन्हीं असूलों पे कार बंद रहे तो कामयाब हुए। आज मेरे आपके लिए भी यही पैगाम है। नंबर एक, दीन इब्राहिमी पर कायम रहना है, नमाज और ज़कात की पाबंदी करनी है, अल्लाह ताला से ताल्लुक़ मजबूत करना है और सिर्फ अल्लाह को अपना वली बनाना है। और अल्लाह की रज़ा को पाने के लिए रुकू करने हैं, सजूद करने हैं, रब की इबादत करनी है, नेक काम करने हैं, अल्लाह की राह में जिहाद करना है और लोगों पर हक की गवाही देनी है। मगर कैसे? इस आयत पे तदरीज के साथ अमल करके। अगर इस आयत को थोड़ा सा खोल के रख दूँ, आम तौर पे तो ये आयत सहाबा कराम से मुतल्लिक है, लेकिन अब उसके बाद क़यामत तक हर उस शख्स के लिए जो नबी सल्लम का उम्मती है, तमाम मोमिनीन ने कुरान से, अल्लाह ने कुरान वालों को एक ख़ास गिरोह का नाम दिया, उनको एक ख़ास काम के लिए चुना, क़यामत तक के लिए तमाम दुनिया को अल्लाह से जोड़ने का काम दे दिया। रसूल ने यही अमल शहादत हक की गवाही के तौर पे अपने दौर के लोगों में किया और आपके पीछे फॉलोअर्स को यही काम करने का हुक्म आप देंगे हज्जतुल विदा के मौके पे। और इसी की रोशनी में सहाबा कराम आपकी दुनिया से कूच करने के बाद मदीना से निकलकर पूरी दुनिया में फैलते गए। जो इलाका फतह होता वो वहाँ जाकर काम शुरू करते, जिधर उनको कुफर में ज़रा सी नरमी और इस्लाम के लिए मवाफिक हालात मिलते वो उधर जाकर उनके दिल नरम करते, उनको इस्लाम देते। हर जगह सिर्फ तलवार के ज़ोर पे तो इस्लाम नहीं फैला, बस्तियों की बस्तियाँ मुसलमान हुई। आप जाकर पढ़िए खतूत जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावा के नाम पे लिखे। एक बादशाह मुसलमान होता तो पूरी रियाया को मुसलमान कर देता। तो ये काम है जिस वक्त उम्मत ने छोड़ा हुआ। यकीन करें, ये है वो हिडन बीमारी कह लें, जरासीम कह लें, वायरस कह लें, जिसने आज उम्मत मुस्लिमा को बीमार किया हुआ है। आज सिर्फ इस एक आयत को आप प्रमोट करते हैं, सिर्फ इस एक आयत की तफसीर जाकर सबसे कह सुन लो। ये है जिसके लिए अल्लाह हमसे नाराज़ है, ये है जिसके लिए हमारी बातें नहीं सुनी जा रही, हमारी दुआएं नहीं कबूल हो रही, हम पे बुरे हुक्मरानों को मुसल्लत किया जा रहा है, हमारे मुल्कों में बेचैनी है, उम्मत मुस्लिमा परेशान है। काम ये बहुत नाजुक है, इसमें कोई शक नहीं, देर इज़ नो डाउट अबाउट दैट। इसके लिए मुजाहिदाना अमल दरकार होता है। इसको सिर्फ वही लोग हकीकी तौर पर अंजाम दे सकते हैं जो सही मानों में अंदर से अल्लाह के आगे झुकने वाले बन गए हों। देखिए, रुकू बहुत लोग करते हैं, अंदर से नहीं झुकते। सजदे बहुत लोग करते हैं, लेकिन अल्लाह के माँ सिवा को भी देख रहे हैं। अल्लाह के सजदे में आपको सिर्फ अल्लाह ही दिखता है और कोई नहीं दिखता। और ये काम सिर्फ वो करेंगे जो दूसरों के लिए इतने ज़्यादा खैरख्वाह हों कि अपना वक्त और अपना पैसा और अपनी स्किल्स और मिम्मा रज़क़नाहुम सब कुछ उनके लिए खर्च करने में खुशी महसूस करें, जो हर दूसरी चीज़ से ऊपर उठकर सिर्फ एक अल्लाह पर भरोसा करने वाले बन जाएं। ऐसे शख्स को मुस्लिम कहते हैं। हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन, अल्लाह ने इधर यही कहा। और यहाँ नोट कीजिए कि इसी को कहते हैं शहादत हक, कार शहादत। इसी को कहते हैं वक्त फुर्सत है, कहाँ काम अभी बाकी है। अभी दुनिया में नूरे तौहीद का इतमाम बाकी है, अभी तो हमने बेदीनी दूर करनी है, अभी तो हमने जहालत दूर करनी है, अभी तो हमने बिदात से मुकाबला करना है, अभी तो फ़िरका वारियत के ख़िलाफ़ मुहाज़राई करनी है, अभी तो हमने जिनसी बीमारियों को दूर करवाना है, अभी तो हमने पता नहीं क्या कुछ करना है। कितने काम है आपके कंधों पे? आप कह रहे सारे काम हो गए, आप मासी सफाई कर गई, बर्तन धो गई, कपड़े भी हो गए, शाम के लिए चावल भी बाल धो लिए, ये कर लिया, ये बहुत अच्छे काम है। जो रिलैक्सेशन आपको घर का काम करके होती है ना, कितना अच्छा लगता है जब सारा घर साफ, सफाई कर गई, काम भी हो गया, आप ही कुछ उचटती सी निगाह डालते कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर अल्लाह करे मासी भी अच्छी मिली और खुश मिजाज भी हो और वो आप पे रोब ना डाले, खुशी होती है ना। बस आप इस फीलिंग को कई हजार गुना आगे करते हैं जब आपको कोई एक मैसेज आता है कि मैंने अपनी ये बुराई छोड़ दी, मैं बदल गई, मेरी ज़िंदगी बदल गई, मेरी ज़िंदगी में सुकून आ गया, मेरे अंदर इत्मीनान आ गया। यकीन करें कि ऐसी एक बात, कोई ऐसी एक शेयरिंग जो दुनिया में कहीं भी आपको मिली हो, उसके बाद आप वाकई कहते हैं अल्लाह तेरा शुक्र है, इसका मतलब कि अभी मेरी ज़िंदगी में खैर है, अभी मैं किसी को खैर दे सकती हूँ, अभी मैं ये कर सकती हूँ, अभी मैं वो कर सकती हूँ। और हमारे पास एक ग्रुप है अल्लाह का शुक्र, हमने ज़ाहिर डिफरेंट जगहों से फॉर्म आते हैं या फीडबैक, तो फीडबैक ग्रुप बनाया हुआ है। बहुत कम पढ़ पाती हूँ मैं, सच्ची बताऊँ, लेकिन बस कभी अगर नज़र पड़ जाए ना तो तशक्कुर के जज्बात से ज़्यादा और कुछ नहीं कह सकती। ज़िंदगियों में तब्दीली, बदलाव और सबसे बढ़ के सबीलुल जन्ना करने वाले। खुद खुशियों से भी बाहर आए लोग, डिप्रेशन से लोग बाहर आए, एंजाइटी से बाहर आए, टूटते घर जुड़े, बच्चे में भी खत लिखते हैं कि आंटी आपका बहुत शुक्रिया, हमारी मामा अच्छी हो गई हैं। शोहरों की तरफ से शुक्रिया नामे आते हैं जब ये स्टूडेंट्स कोर्सेज करके निकलते हैं ना, कहते घर में चैन आ गया। तो यकीन कीजिए आप इस बात का, अगर आपको यकीन आ जाए ना कि ये है जो काम जिसको अल्लाह ने आपके मेरे लिए रखा है, इसके बाद तो मरने को भी नहीं दिल करता। कब्र में क्या सोते ही रहेंगे, सोना अच्छा नहीं लगता। आप में जिसको नींद नहीं आती ना, शुक्र करे, जिसको भूख कम लगती है शुक्र करे, जिसके घर वाले 3 वक्त खाना नहीं मांगते वो शुक्र करे, जिसके बच्चे बड़े हो चुके हैं वो शुक्र करे कि अल्लाह मुझे तूने फारिग कर दिया। हम सब अगर इस एक आयत के आईने में अपने मामूलात को देख लें ना, तो मैं एक वाक़या सुनाती होती हूँ, मुझे अच्छा लगता है तो शायद आपको भी फ़ायदा होगा। हम अपनी ज़िंदगी के छोटे छोटे मामूलात को, वो जिसको अच्छा लफ्ज़ तो नहीं लेकिन फड्डे बना लेते हैं, झगड़े। तो एक शख्स थे जो दीन की दावत थे, ये तबलीग के काम में थे, उनकी बेटी किसी वजह से नाराज़ हुई, घर आ गई, बाप के पास आके बैठ गई। अब कुछ दिन गुजर गए, अब बाप भी परेशान है, क्या करूँ, ज़रा घर में झगड़ा हो तो सुकून कहाँ होगा। इतने सुकून से कोई पढ़ पढ़ा सकता है अगर दिल में सुकून ना हो और घर में सुकून ना हो, लड़ाई और झगड़े हों। खैर वो एक दीनदार के पास, आलिम थे, उनके पास गए कि मुझे मशवरा दीजिए मैं क्या करूँ। वो दीनदार भी माशाल्लाह तबलीग से जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा कि सुनो, अब तुम्हारे पास 2 बातें हैं, या तो बाप बन के जियो या नबी का उम्मती बन के जियो, डिसाइड तुमने करना है। कहा वो कैसे, कहने लगा मुझे एक बात का जवाब दो, तुम्हारी बेटी का दामाद से झगड़ा क्या है। कहने लगा ऐसी तबीयतों का इख्तलाफ, आदत नहीं मिलती, ये वो। कहा उसके दीन में तो नहीं कोई नक्स। कहा नहीं नहीं दीन में नहीं, बड़ा अच्छा बच्चा है। कहने लगा अब तुम एक काम करो, अगर तुम बेटी का बाप बन के जीना चाहते हो ना, तो फौरन बेटी को घर बुलाए हुए ना मुकदमा रखो, रोज़ झगड़े करो, ये करो, फिर उसे तलाक दिलाओ, फिर बेटी की इद्दत कटवाओ, फिर उसका नया रिश्ता ढूंढो, फिर उसके नए सारे काम करो, तुम्हारी सारी चीज़ें पीछे रह जाएंगी और तुम इसी खपाइयों में पड़े रहोगे, तुम्हारे यही मसले रहेंगे। एक बात कर लो बाप होने के नाते, तो बाकी करो। लेकिन अगर तुम एक मुबल्लिग, एक तबलीगी, एक हुआ समाकुमुल मुस्लिमीन की ज़ुबान कह दूँ, अगर तुम इस रंग में सोचोगे ना, तो फिर मैं तुम्हें ये कहूँगा कि बेटी को कहो बेटा मैंने आपकी तरबियत की, पढ़ाया लिखाया, आपको मैंने हर लिहाज से अकोमोडेट किया, मैं अपना काम कर चुका हूँ, मुझे जो बेहतरीन शख्स दिखा मैंने उससे आपको ब्याह दिया, अब आप जानिए और वो जाने, अपना मामला खुद समेटें, मुझे जाना है ज़रा किसी जगह कुछ पढ़ने पढ़ाने। अब ये है जवाब। हम जिंदगी के छोटे छोटे मामले, इतना सा बच्चा, बालिश भर का बच्चा हमें हमारे मकसद से हटाने के लिए बहुत काफ़ी है। इतनी सी 19 से 20 की हमारी ज़िंदगी की चेंज हमें इस काम से हटा देती। तो याद रखिए, अल्लाह ने इस शहादत हक के काम को आसान कर दिया, बाहर की सारी रुकावटें दूर हो गई। कैसे, अल्लाह के नबी के ज़रिए इनकलाब आ गया, आपने वो सारी, जैसे कहते हैं ना, थ्रेश होल्ड अपने ऊपर बर्दाश्त की, और कुल जाल हक वज़ाहल बातिल, मक्का फतह हो गया, इस्लाम आ गया। पिछले अम्बिया से जो बात शुरू हुई थी वो मोहम्मद मुस्तफ़ा पे अल्हम्दुलिल्लाह लियुसख़िरहुल्दीन कुल्लिही पे गालिब हो गई। आप देखा जाए तो इस रास्ते में हकीकी रुकावट कोई नहीं है। बाहर की दुनिया में आज भी मजहब की तबलीग बिल्कुल एक जेन्युइन और 100% लीगल एक्ट है। आपने हाइड पार्क का नाम सुना होगा, वहाँ जाकर तो कोई गालियाँ भी दे देना हुक्मरानों को भी तो कुछ नहीं कहते। लंदन में मैं उसकी बात नहीं कर रही, आप पूरे ब्रिटिश में, अमेरिका में, कनाडा में, आप क्रिश्चियन हैं, आप अपने क्रिश्चियनिटी को प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है, आप जाइए खड़े हों हर जगह, तो उनके ट्रेन स्टेशन हैं। मैंने शायद ही कोई ऐसा स्टेशन देखा हो कि जहाँ कोई बूथ लगा के ना खड़ा हो, क्रिश्चियंस, मोमन्स, और फिर एक और नाम जो नॉर्वे में, तो वहाँ वालों को तो अक्सर ही सुनाती हूँ, उन्होंने तो देखा भी होगा, खुद को जोहा विटनेस कहने वाला एक ग्रुप, यानी जोहास पता कौन है, जिसको आप मुसलमानों के एहले हदीस कह दें या वो कह दें जिनको लोग वहाबी कहते हैं, वो क्रिश्चियंस के वहाबी हैं, मिसाल दे रही हूँ। -14, -10, बारिश, आंधी, तूफान, जहां लोग ट्रेन से उतरते हैं ना, बूथ लगा के खड़े हैं, घंटों घंटों बातें करते हैं, जिस जिसका मैसेज, पैगाम, ये वो, कोई कुछ नहीं कहता। हम मुसलमान सो रहे हैं और सो रहे हैं और सो रहे हैं, क्योंकि हमने रात की ड्यूटी करके आना है। हम सोए हुए हैं। देखिए, मेरे इस दर्द को आप बुरा ना मनाइए। ये मैं एक डॉक्टर होने के नाते, जब आपको बीमारी दिख जाती है ना मरीज की, तो आप उन्हें कहते हैं आप क्यों पैसे ज़ाया कर रहे हैं फजूल चीज़ों पे, ये है इलाज, आपको ये ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा। दैट इज़ द ऑपरेशन। अल्लाह ने रास्ते हमवार कर दिए, कोई नहीं रोकता। किसी को आप ना छेड़ें और अपने इस्लाम की दावत दें, कोई नहीं रोकता। मानना ना मानना अगले की मर्जी है, लेकिन हम मुसलमान सो रहे हैं। हम अमेरिका जाते इस काम के लिए, हम नॉर्वे से लेके पूरे यूरोप और शंगन और यूरोप में फिर इसके लिए फिरते हैं। एक जगह किसी जगह हमारी बातचीत हो रही थी तो यही मौजू छिड़ गया कि बाहर के मुल्कों में रहने का तो यही एक मकसद है बस। दैट इज़ द ओनली वीज़ा एंड सेंक्शंस टू लिव इन एनी अदर कंट्री। कुरान सुन्नत की अगर आप डिक्शनरी खोलेंगे ना, आप किसी नॉन मुस्लिम मुल्क में खुशी से रहें, सारी ज़मीन अल्लाह की है, दो शरायत है। एक तो अल्लाह के बन के रहें, अल्लाह के बंदे बन के रहें, अल्लाह के सफ़ीर, नुमाइंदे, एम्बेसडर बन के जिए, और दूसरा ये कि वहाँ दावत हक दीजिए। तो जब ये बात हुई तो वो ब्रदर एक जो बड़े दुखी थे, वो कहने लगे कि सिस्टर आप तो ये बात कह रही हैं, तो ये लोग दावा करने आए थे, ये तो अपने घर बेच के यहाँ काम करने आए हुए हैं, ये तो छुपते छुपाते झूठे सच्चे वीज़े लगवा कर ये कोई यहाँ को दावा करना है, ये करनी होती तो ये सऊदीया जाते या पाकिस्तान रहते। बात सच है। हम लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए, बच्चों के पढ़ने पढ़ाने के लिए, कितना हवा है आज हमारे जहन में कि आला तालीम के लिए बाहर जाना। इतना लो स्टैंडर्ड है एजुकेशन का कई जगहों पे, नाम बड़े हैं, तहजीब नहीं, तमद्दुन नहीं है, वहाँ से जो अफकार निकलते हैं सब, ऐसा भी नहीं होगा जैसे यहाँ सब अच्छे नहीं है ना, वहाँ सब बुरे भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन एक काम जिसके लिए आप और मुझे निकलना था, और वो कहता कुन तुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, अल्लाह ने सारी रुकावटें दूर कर दी। अब ये अलग बात है कि कुरान के हामिलीन खुद ही अपनी नादानी से अपनी राह में खुद साख्ता मुश्किलें पैदा कर लें, और आप ये कह लीजिए कि एक आसान काम को मस्नूई तौर पे मुश्किल बना डालें। बिल्कुल नहीं मुश्किल। और मैं गवाही देने के लिए आपको बता सकती हूँ, अल्लाह ने ये काम के लिए इधर उधर हमें लेके भेजा है, इस वक्त भी सबसे आसान, हर लिहाज से आसान से मुराद ये कि एक तो टेक्निकली और हालात, लेकिन खुल के काम करने में अमेरिका और कनाडा दी बेस्ट बेस्ट सरफेस है इस वक्त भी, और यूरोप भी ऐसा ही है। आज तक किसी ने उंगली नहीं लगाई, अल्लाह ना करे कोई लगाए। और आप आइए अपने यूएई में, आप एक दर्स नहीं दे सकते बगैर इजाज़त के। आप सऊदी अरब में जाते हैं, आपका दर्स को रख ले। अपने मुल्कों में भी जो बेचारे हम रोते धोते कर लेते हैं, अल्लाह ताला उसको कबूल करे, हर तरह की बातें। तो बात का खुलासा क्या है, कितने खूबसूरत पैगाम पे पारा पूरा हो रहा है। खुश रहना चाहते हो? देखिए, आप में चाहते हैं ना हमारा लाइफ स्टाइल अच्छा हो, पीस भी एंड प्रॉस्पेरिटी भी हो, खुशी भी हो तो खुशहाली भी हो, तो आप इस काम को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। आज यहाँ से उठने के पहले अपने 5-6 गम लिखिए, तकलीफें, सब कुछ है, दिल खाली क्यों है? आपको पता है कि आज से कोई 20-25 साल पीछे खुदकुशी का जो एक स्टैंडर्ड था ना, एज शायद 46 थी, कि 40+ लोग खुदकुशी का सोचते हैं, इस वक्त 2023 में किस पे पहुंच चुकी है, अर्ली टीनेजर। 43 से नीचे गिरा के ग्राफ खुदकुशी का जब आप 15 से 20 पे ले आए, तो क्या वो बच्चा खुश है? आज आपका बच्चा फ्रस्ट्रेटेड है, परेशान है, क्योंकि उसके दिमाग पे जो वल्गरनेस है, अब अगले पारे में हम उसको भी देखेंगे। सुबहान रबी का रबी इज़्ज़त अम्मा यसिफून, वसलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रबिल आलमीन। जज़ाकल्लाह खैर।